Thank you so much, sir, for your time. I really appreciate your time, and we will start from your introduction. Would you like to introduce yourself, sir?
Bismillahirrahmanirrahim. Mera naam Alam Zeb hai. Main Deputy Director Database. Aur maine join kiya Board of Revenue ko late 2016 mein, start 2017.
Theek sir. To sir, kitne saal se total aap yahan pe kaam kar rahe hain?
तकरीबन 6 साल से.
और आपकी क्वालिफिकेशन सर?
मैंने एमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में किया.
ठीक सर. सर आपके ख्याल में प्रोजेक्ट आपके यहाँ पे सॉरी जॉब डिस्क्रिप्शन से स्टार्ट करते हैं. टेल मी अबाउट योर जॉब डिस्क्रिप्शन सर.
जॉब डिस्क्रिप्शन तो टोटली टेक्निकल है. इसमें डेटाबेस से रिलेटेड है, बैकअप रिकवरी ये चीज़ है.
ठीक सर.
लेकिन जो बेसिकली जॉब है वो इससे हट के ये नहीं करना पड़ता. इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो है ना मीटिंग कोऑर्डिनेशन, सर्विस प्रोवाइडर के साथ बीच में एक मीडियम का रोल प्ले करना होता है.
जी सर. सर आपके ख्याल में प्रोजेक्ट कैसे इनिशिएट हुआ अबाउट इन योर नॉलेज जो आपका कीपिंग इन व्यू योर नॉलेज प्रोजेक्ट कैसे ऑन बोर्ड हुआ?
प्रोजेक्ट तो स्टार्ट हुआ था हमारे रिक्रूटमेंट से पहले. ये बेसिकली स्टार्ट हुआ था फेज़ वन और फेज़ टू दो फेजेज में. फेज़ वन इसका स्टार्ट हुआ था 2013 में और टू पे स्टार्ट हुआ था 2015 में.
जी सर.
तो हमारे आने से पहले ये किक ऑफ हो चुका था.
सही सर.
हम उसके बाद रिक्रूट हुए. और ये एक मतलब प्रॉब्लम भी है कि जिन्होंने मतलब लेना है रिसीव करने वो पहले लेना चाहिए था, फिर उसको आपने सीधे जाना खुद ही मैनेज करना चाहिए था, जिसकी वजह से कुछ मसले मसाइल भी अभी भी फेस हो रहे हैं.
सही सर. सर कैन यू टेल मी अबाउट योर एक्सपीरियंस ऑफ द प्रोजेक्ट ड्यूरिंग इट्स इम्प्लीमेंटेशन? जब ये डिजिटाइजेशन इम्प्लीमेंटेशन हो रही थी उस टाइम आप लोगों को क्या मसले मसाइल पेश आए?
मेरी फर्स्ट जो डिस्ट्रिक्ट मुझे असाइन हुआ था वो डिस्ट्रिक्ट लकी मरवत था. लकी मरवत में जब मैंने वहाँ पर अराइवल दी तो मैंने जब चेक किया तो वहाँ पे कोई ऑफिस सेटअप नहीं था, क्योंकि ये इस तरह किसी ने ओन नहीं किया हुआ था. और वो बिल्कुल बेसमेंट डीपीसी पे काम हो रहा था ऑफिस का. बाकी जो सर्विस प्रोवाइडर था उधर वो फिजिकली वहाँ पे अवेलेबल नहीं था. वो वहाँ पे स्कैनिंग का काम करता था. स्कैनिंग वहाँ से उठा के फिर यहाँ पे पेशावर पे इधर जाना ऑफिस में पेशावर के लैब में ये लकी के डेटा एंटर कर रहे थे. तो फिजिकली वहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर होना चाहिए था एज पर एग्रीमेंट, लेकिन वहाँ पे अवेलेबल नहीं था. और ये रिस्पांसिबिलिटी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की थी कि वो उसको जो है ना फोर्स करते कि आपने जहाँ पे एग्रीमेंट के अंदर अपने हमारे साथ किया हुआ है कि वहाँ पर लैब खोलेंगे, वो लैब नहीं था. तो ये स्टार्टअप में जो है ना मुझे मसला था काफ़ी, क्योंकि मैं कोई चीज़ जो है ना जो मैंने सुपरवाइज करनी थी उसका मेजर कंपोनेंट मिसिंग था. और ऑफिस था नहीं. तो स्टार्ट में मैं जो ना अपनी गाड़ी को ही एज ऑफिस यूज़ करता होता था. मेरी फाइल है जो करस्पॉन्डेंस थी वो मैं लैपटॉप पे करता होता था और गाड़ी में जो ना फाइलें पड़ी होती थी. तो बैठने की भी जगह नहीं थी. डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जिसको वेलकम करना चाहिए था वो उस तरीके से नहीं किया. तो स्टार्ट में इस तरह जाना एक्सपीरियंस हुआ.
ठीक सर. सर तो फिर कैसे इस ट्रांजिशन को मैनेज किया गया? ये मैनुअल से जो डिजिटाइजेशन हो रही थी कैसे फिर मैनेजमेंट कैसे की?
तो मैं डिप्टी कमिश्नर से मिलता होता था, क्योंकि वहाँ पे मेरे जो इमीडिएट बॉस थे वो डिप्टी कमिश्नर थे और जो प्रोजेक्ट मैनेजर थे वो एसी थे
जी.
असिस्टेंट कमिश्नर. तो इन दोनों से मैं मिलता होता था. असिस्टेंट कमिश्नर तो इतना टाइम नहीं देता होता था, लेकिन उस वक्त के जो डिप्टी कमिश्नर थे वो मीटिंग भी कॉल करते होते थे, बुलाते भी होते थे और मैं खुद भी जाता होता था. तो मैं उसको मैंने जब ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की तो मैंने उससे बात की कि एक तो यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर का होना ज़रूरी है, दूसरी बात यह है कि जो कंप्यूटर ऑपरेटर लिए हुए हैं ये जो ना मुझे जो ना रिलीज़ कर दे ताकि ये अपने उस पर जो ना फोकस कर सके. तो वो कंप्यूटर ऑपरेटर उसने इसलिए रिलीज़ नहीं किया कि सर्विस प्रोवाइडर उसके बस में नहीं था. तो वहाँ उसके थ्रू मैं उसको लेटर देना बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को लिख लेता था कि हमें जो ना सर्विस प्रोवाइडर यहाँ पर चाहिए. तो तकरीबन मैं 2.5 साल मैं लिखता रहा थ्रू डीसी कि हमें ये जना मसला रिजॉल्व कर दें, लेकिन 2.5 साल पे कोई भी किसी के काम पे जो भी नहीं रहेगा. तो इस दौरान हमारे जन एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर आए हैं हैसर रहमान साहब. तो उसने विजिट किया और ये पहला प्रोजेक्ट डायरेक्टर था इसका जो मैंने देखा जिसने डिस्ट्रिक्ट को लकी मारवत को विजिट किया
जी।
इससे पहले कोई बंदा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का डिस्ट्रिक्ट लकी मारवत में उसने विजिट नहीं किया कि यहाँ पे कंप्यूटराइजेशन के साथ हो क्या रहे। मीटिंग कॉल करते होते थे मैनेजमेंट कमेटी के नाम से जिसमें एसी भी होता था, मैं भी एज ए मेंबर होता था, लेकिन वो बस जस्ट खाना पूरी होती थी और चाय पी के चले जाते थे। कमिटमेंट होती थी और वो पूरी नहीं होती थी और वो बार बार वो रिपीटेडली वो फेस करता होता था। तो जब ये बंदा आया है इस रहमान साहब, तो इसने जब विजिट किया तो वहाँ पे मैंने जाना उससे ये बातें शेयर की, उसके साथ मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस शेयर की। तो उसने कहा कि ये जो मसला है ये मैं आपको रिजॉल्व करके अभी देता हूँ। तो उसने सर्विस प्रोवाइडर को कॉल किए और कॉल करके उसको बताया कि मैं आपको ब्लैकलिस्ट करता हूँ, तो थ्रेड दे दिए अगर आप यहाँ पर नहीं आए। तो उसके साथ वो एक डेट कमिट किए और मुझे उसने बताया कि अगर इस डेट पे वो इस नामल नहीं किया तो फिर आपने मुझे जाना मुझे कॉल करनी है। तो मैंने कॉल किए और वो उस बंदे ने एक महीने के अंदर वो प्रॉब्लम रिजॉल्व किए जो पिछले 3 साल से ऐसे ही पड़ा हुआ था। और साथ साथ में जाना CNW के साथ भी जाना कोऑर्डिनेशन थी DC के थ्रू, बिल्डिंग पे काम हो रहा था
जी।
तो बिल्डिंग 2.5 साल के अंदर वो तकरीबन फिनिशिंग उसमें स्टेट में आ गई। मैंने अपना ऑफिस फिर उसमें इस्टेब्लिश किया। 2.5 साल 2 साल तक मेरा ऑफिस कोई नहीं था, तो मैंने जाना अपने गाड़ी से चीज़ें उसमें शिफ्ट कर दी और फिर सर्विस प्रोवाइडर भी उधर आ गया, स्टाफ मिल गया मुझे। अब हमने जाना 20 से 30 मोजे के ऊपर काम शुरू किया। अब एक्चुअल काम 2.5-3 साल बाद शुरू हुआ।
तो मतलब सर बिल्डिंग के लिए एक और डिपार्टमेंट पे गवर्नमेंट रिलाई करती है, CNW पे।
इनिशिएट तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने ही किया था ना, इसका जो ADP होता है प्रोविंशियल ADP था, सारे प्रोविंस के लिए एक ही था
जी।
लेकिन इसकी जो गवर्नमेंट में ये स्ट्रक्चर इस तरह है कि इसको एग्जीक्यूट जो करता होता है वो CNW ही करता होता है और CNW ऑलरेडी DC के अंडर है, तो कोई इशू नहीं था। वो अपना काम कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू करवाते होते थे और मीटिंग भी होती थी, प्रोग्रेस भी होता था, उधर से मुझे कोई मसला नहीं था। बिल्डिंग अपने उस पर जाना कम्प्लीट
हो गई
थी, लेकिन मसला था सर्विस प्रोवाइडर जो वहाँ पे वो होस्ट नहीं कर रहा था
डेटा एंट्री। यानी बिल्डिंग रेडी थी और डेटा रेडी नहीं था।
बिल्डिंग अपने टाइम पे रेडी हो गई है, मतलब जो उसके साथ करते होते थे वो फॉलो अप होता था। बिल्डिंग में मुझे इशू नहीं था और ये जो असल में इसका मेन काम जो था वो डेटा रेडीनेस था
जी।
वो मैं सुपरवाइज नहीं कर पा रहा था कि सर्विस प्रोवाइडर उधर अवेलेबल ही नहीं था। और मैंने आपको बता दिया कि
सर फंड्स की कमी की वजह से उसने काम बंद कर दिया था या वो आते ही नहीं थे, वो अपना काम कहाँ बैठ के करते थे।
वो मैंने शुरू में बता दिया था
जी
कि वो पेशावर की जो डेटा एंट्री लैब था उसमें वो काम कर रहे थे।
ओके अच्छा ठीक से,
मतलब वो पेशावर के लैब को लकी के लिए भी यूज़ कर रहे थे और टैंक के लिए भी यूज़ कर रहे थे और पेशावर का डेटा एंट्री भी उधर उसी में ही कर रहे थे। तो ये पता नहीं चला था कि जना हमारा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में मेरे पास था कोई नहीं। मैं बस DC साहब से मीटिंग कर लेता था और अपने मसले बता के वो कहते आप लेटर लिख दें, तो वो लेटर लिख के वो इधर भेज देते थे और वो लेटर गायब हो जाता, उस पर कोई एक्शन नहीं होता। तो ये जो साहब आए थे हमारे हैसर रहमान साहब, इन्होंने वो मसला 1 महीने के अंदर हल कर दिया और फिर जो ना चल पड़ा सिलसिला।
सर आपके ख्याल में ड्यूरिंग दिस प्रोजेक्ट कौन सी चीज़ बहुत अच्छी थी जो अच्छा हुआ, यानी कौन सा स्टेप ऐसा था जो बहुत अच्छा था और कौन सा स्टेप था जो मिसिंग था या जो नहीं होना चाहिए था?
पहले तो मेरे उसमें जो जहन में चीज़ आती है ना कि ये होना चाहिए था नहीं, मतलब उसमें वो ये था कि एक ही हेड होना चाहिए पावरफुल पूरे प्रोजेक्ट को सुपरवाइज करने के लिए। यहाँ पे मसला ये था कि 3 थे, कभी DLR होता था, कभी प्रोजेक्ट डायरेक्टर, कभी SMBR, तो वो मतलब वो चीज़ अचीव नहीं होती थी, क्योंकि वो एक पेज पे ना हो तो कहीं पे भी कोई मसला हो तो फिर वो चीज़ अचीव नहीं होती। एक तो उसका हेड एक ही होना चाहिए
ठीक से,
जिससे फिर इसकी जो ना वो अब आज सूरत हाल कुछ और होती
ठीक से। और क्या चीज़ अच्छी थी सर जिसने हेल्प किया प्रोजेक्ट को, कोई ऐसा स्टेप जो अच्छा हो, अलाइन हो प्रोजेक्ट की कंप्लीशन की तरफ, या वो कोई स्टेप था ही नहीं?
मुझे कोई नहीं नज़र नहीं है इस तरह का जिसको मैं कहता हूँ कि ये जना एब्सोल्युटली परफेक्ट है, इस तरह का कोई मुझे वो नहीं मिला, ना तो प्लेटफॉर्म मिला ना वो मैनेजमेंट चेंज होती थी। 6 साल के अंदर मैं तकरीबन 6-7 DC के साथ काम किया, तो उसमें कुछ इस तरह के बॉसेस मिले जिससे काफ़ी लर्न किए, वो अच्छी बात थी। कि वो जो है ना वेल वर्सेंट थे, उसने मुझे जो है ना काफ़ी एजुकेट किया, कैसे वो करते होते, करस्पॉन्डेंस करते होते, उसमें काफ़ी गाइड किया। ये चीज़ अच्छी थी क्योंकि मैं कॉरपोरेट सेक्टर से था, मैंने फर्स्ट टाइम जो है ना गवर्नमेंट में आया था, तो उसके प्रोसेस समझाने में और उसको गाइड करने में वो बेटे की तरह बिल्कुल किए कुछ डिसीजन, जो मेरे लिए एक जो है ना काफ़ी अच्छी बात थी कि मैंने नई चीज़ें लर्न की है कि गवर्नमेंट में करस्पॉन्डेंस किस तरह होती है, काम किस तरह इनिशिएट होते हैं, तो वो चीज़ जो है ना अच्छी थी।
ओके सर, सो टेल मी अबाउट योर एक्सपीरियंस आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन, जब SGC लाइव हो गया लकी में, तब आप थे उस स्टेज पे।
अच्छा, दूसरी जो मिस हैपन हुई है ना मेरे साथ, वो ये हुई है कि जब ये चीज़ें रेडी हो गई, मतलब एक टेक ऑफ के लिए प्रोजेक्ट जो है ना रेडी हो गई, तो बिल्कुल इन द मेन टाइम जो है ना ट्रांसफ़र आ गई और मैं यहाँ ट्रांसफ़र हो गया। तो जितनी मैंने जो ना वो एक रूट लेवल से मैंने चीज़ उठाई थी और अब टेक अप के उसके ऊपर थी, तो ट्रांसफ़र ने काफ़ी डिमोटिवेट किए। लेकिन जब DI हाँ ट्रांसफ़र हो गया, वहाँ पे मेरे पास रिसोर्सेज लकी की नस्बत अच्छी थी, स्टाफ भी अवेलेबल था, ट्रेन भी था और कंप्यूटर हार्डवेयर भी पड़ा हुआ था। तो मैं जब DC साहब से मिला तो उसने कहा कि हाँ मैं इनॉग्रेट कर सकते हैं, मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं, हमारे पास इतनी चीज़ें हैं, इतनी रिसोर्सेज हैं कि हम SDC को स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो कमिटेड था, DC साहब भी हेल्प आउट करते थे, तो हमने विद इन जब ट्रांसफ़र हुई है तो 3 महीने के अंदर हमारी 4th SDC थी DI हान की पूरे KP में, जब हमने उसको इनॉग्रेट किया और 10 मोज़े स्टार्ट किए। तो वो 2 साल में DI हान पे रहा, मैंने 3 सर्विस डिस्ट्रिक्ट चेंज किए, इस दौरान मेरी 3 ट्रांसफ़र आई है। 2 साल में, 2 साल से कुछ कम, 2 साल में हमने 96 मोज़े DI हान के लाइव कर दिए और ये अबाउट 90%+ DI हान तहसील। बाकी तहसीलों के मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे, HR नहीं था, जिसकी वजह से उसको स्टार्ट नहीं कर सके, हार्डवेयर भी नहीं था। लेकिन एक तहसील जिसके पास मेरे पास रिसोर्सेज थे, उसको मैंने फुल यूटिलाइज़ किए और पटवारियों से भी काम लिए, सर्विस प्रोवाइडर से भी काम लिए और 96 मोज़े, ये आप इससे अंदाज़ा लगा सकती है, ये कभी मैं फर्स्ट टाइम 2 साल के अंदर 96 मोज़े किसी भी तहसील के अंदर लाइव हुए ये पहले। लेकिन 7 ट्रांसफ़र आ गई है, फिर मैं टांग चला गया और इन द मेन टाइम मेरे पास टांग का एडिशनल चार्ज भी था, 1.5 साल से वो भी चला रहा था, उसकी SDC भी रेडी किए और 20 मोज़े भी रेडी किया कर दिए थे।
ड्यूरिंग ऑल दिस थिंग डिड यू फेस एनी चैलेंजेस?
ये सारे चैलेंजेस ही तो है। एक तो ये है कि जो ना जब आप चीज़ें रेडी करते हैं तो ट्रांसफ़र आ जाती है,
पोस्टिंग ट्रांसफ़र एक चैलेंज है,
एक ये मसला है। दूसरी ये है कि जो सर्विस प्रोवाइडर है, ये मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जितनी भी डिले आई है ना, मैं जो समझता हूँ पहले डिले जो आई है वो तो एक हेड ना होने की वजह से आई है। अगर एक हेड होता जिस तरह मैंने जिक्र किए, हैसर रहमान साहब हमारे मिले आया था और रहमान साहब हमें मिले, वो बड़े अच्छे थे, उसने हार्डवर्क जो प्रिक्यूमेंट का प्रोसेस था बड़ा तेज तरीके से किए और अभी जो हमारे PD है ये भी मतलब जो है ना उसको सही लेके चल रहे हैं। तो अगर एक पावरफुल हेड होता, उसके पास पूरा हथियार होता बजट को लगाने का, और ये हमारे जो ना बजट लैप्स हो जाती थी, इस तरह भी प्रोजेक्ट डायरेक्टर गुजरे हैं जिससे जो ना बजट लैप्स हो जाए, तो आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि ये मैनेजमेंट की क्या क्वालिटी है। तो एक डिले की वजह यह था कि एक हेड ना होने की वजह से, अभी भी मैं समझता हूँ कि अभी भी होना चाहिए, अगर ना हो तो फिर जन आगे डिले होता रहेगा इस तरीके से ही। दूसरा ये था कि सर्विस प्रोवाइडर नहीं होना चाहिए था, जब हमने अपना स्टाफ ले लिया, अपना सेटअप खड़ा कर दिया, चूँकि सर्विस प्रोवाइडर ने क्वालिटी के ऊपर फोकस नहीं किया, उसने सिर्फ जो ना वो हनापुरी की है। तो अगर वो अपना स्टाफ करता तो वो डेफिनेटली क्वालिटी के ऊपर जो ना वो फोकस करते और ज़्यादा इम्प्रूव होता।
सही, मतलब सर लिमिटेड रिसोर्सेज थे, प्रॉपर PD ऑथोराइज PD नहीं था और दूसरा पोस्टिंग ट्रांसफ़र एक चैलेंज था। इसके अलावा सर
ये मेरे साथ हुआ है, कुछ ने इस तरह भी किया कि 5-6 साल से एक ही स्टेशन पे, लेकिन मेरे साथ ये मैंने अपना बता दिया।
एक्जैक्टली, इसके अलावा कोई चैलेंज सर जो प्रोजेक्ट में आपको लगे कि ये चीज़ प्रोजेक्ट के लिए एक चैलेंज है आपका, व्हाट इज़ योर बिगेस्ट कंसर्न अबाउट द प्रोजेक्ट?
अच्छा, DI हाँ में जब SDC रन हो गया तो रन होने के लिए तो मैं बड़ा वो जो है ना इंतज़ार कर रहा था कि जैसे तैसे हो के हो रन हो जाए, लेकिन उसके बाद जो हमने फेस किए ना मुश्किल, वो ये थी कि अब रनिंग एक्सपेंडिचर कहाँ से हो। तो DC उसको जो है ना कह रहा था कि मैं अपने हेड से तो नहीं कर सकता, ये प्रोजेक्ट है, डायरेक्टर से बात करता अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टर से, वो कहते हैं नहीं ये तो डीसी करेगा, डीसी कहते हैं वो करेगा, तो बीच में पब्लिक सफर होती, तो ये जो है ना वो थी,
यानी नो प्रॉपर फंडिंग मैकेनिज्म टू रन दी एसडीसी।
एग्जैक्टली, रनिंग एक्सपेंडिचर हमारे जो है ना अक्सर जो है ना जेब से लगाते होते थे, और वो मतलब प्रॉपर वो सिस्टम नहीं था कि जिससे आपको जो है ना स्टेशनरी मिले, जिससे आपको इलेक्ट्रिशियन चाहिए वो मिले, आपको कोई और सपोर्ट चाहिए वो मिले, इस तरह का कोई वो मतलब ये नहीं है, अभी भी नहीं है। फंडिंग कोई मैकेनिज्म होना चाहिए, और वो ऑथोराइजेशन या तो प्रोजेक्ट मैनेजर हो या डिप्टी डायरेक्टर हो, ताकि वो जो हायरार्की इतना ना हो कि जना उसके अप्रूवल में जना बंदे को जना इतना टाइम लगे कि
उधर। आपका सबसे बड़ा कंसर्न क्या है सब प्रोजेक्ट के बारे में, कि अगर ये चीज़ नहीं, ये चीज़ होनी चाहिए इस वक्त प्रोजेक्ट में या ये चीज़ नहीं होनी चाहिए?
एक पावरफुल हेड होना चाहिए,
बस ये आपको बिगेस्ट कंसर्न है,
ये बिगेस्ट कंसर्न। दूसरी बात ये है कि उसको फिर जाना ये जो रनिंग एक्सपेंडिचर है ये मसला हल करना चाहिए,
सेल्फ सस्टेनेबिलिटी, और
डीडी को फैसिलिटेट करना चाहिए इन टर्म ऑफ रिसोर्सेज, जिस तरह एचआर हो गई है कई डिस्ट्रिक्ट में जो है ना, अभी भी हमारे जो ना वीकेंड पोस्ट पड़े हुए उसको हायर करने का कोई वो नहीं स्टार्ट हो रहा, तो ये स्ट्रीमलाइन होनी चाहिए ये चीज।
Sir, how about the monitoring and evaluation mechanism for the project? वो है
मॉनिटरिंग का तो है, वो हमसे पहले हायर हुए थे, एक मतलब जो ना टीम हायर हुई है जिसका काम ये था कि वो सर्विस प्रोवाइडर के परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते, लेकिन मैं उसे सेटिस्फाई नहीं हूँ क्योंकि वो उस तरीके से काम नहीं हुआ जिस तरीके से KPI जो ना बिल्ड होने चाहिए, उसको मॉनिटर करना चाहिए, इस तरह का कोई मैकेनिज्म नहीं है। कुछ को MOs जो मॉनिटरिंग ऑफिसर है उसको एज ए DD हम यूज़ कर रहे हैं, कहीं कहीं किसी किसी हाल ही उस पर जहाँ पर DD नहीं है, बाकी प्रॉपर जो चेक एंड बैलेंस होता है वो नहीं है कि अब सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर जो ना अगर आपने जो है ना आउटसोर्स कर दिए तो इसके ऊपर चेक भी होने चाहिए कि वो आप काम जो कर रहे हो सही कर रहे हैं, ये कोई मैकेनिज्म इस तरह का नाम को नहीं है।
सही सर। सर, हाउ डू यू थिंक, हाउ फार आर यू इन द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, वर द टाइमलाइंस मेट, इफ नॉट व्हाई?
मैं जो समझता हूँ ना, ये पूरा प्रोजेक्ट पूरे KP का ये 1.5 से 2 साल में कम्प्लीट होना चाहिए, और अभी 6 साल हुए अभी भी कंप्लीट नहीं है, तकरीबन 48% है। तो मेरा जो अभी एक्सपीरियंस हुए 6 साल इस उसमें ना गवर्नमेंट सेक्टर में, मैं समझता हूँ कि ये 1.5 से 2 साल में अगर रिसोर्सेज अवेलेबल हो, पावरफुल हेड हो, फोकस्ड, तो ये मीट किया जा सकते हैं 2 साल के अंदर।
सही सर। सो हाउ इज द फीडबैक फ्रॉम द पब्लिक ऑन द प्रोजेक्ट?
पब्लिक के रिस्पॉन्स जो है ना वो वेरी कर रहे हैं, कुछ का तो जो है ना बड़ा पॉजिटिव है, और चूंकि मैंने कहा कि सर्विस प्रोवाइडर ने डेटा क्वालिटी के ऊपर कोई फोकस नहीं किए, जिन सिस्टम इनकन्सिस्टेंस है जिनके रिकॉर्ड में वो बड़े सफ़र होते हैं, उसका फीडबैक सही नहीं है, क्योंकि रेक्टिफिकेशन का जो मैकेनिज्म है वही पुराना है, पटवारी के पास जाना, फिर उससे जो है ना हल करके फिर तहसीलदार के पास जाना, फिर वापस आना, ये जो चैनल है ये सही नहीं है। मतलब डेटा रेक्टिफिकेशन जो सी है इसको जो है ना सिंप्लीफाई करना चाहिए, बोर्ड को ऐसे रूल्स लेके आने चाहिए जिसमें जो है ना कंप्यूटर ऑपरेटर के पास इतनी जो है ना वो ऑथोराइजेशन हो कि वो किसी उसको जो है ना जज करके उसको ठीक कर सके। अभी हमारे पास ये है कि हम तहसीलदार के जो है ना वो फील्ड के तहसीलदार के फील्ड के पटवारी के जो ना फर्द बदरात जितने भी MSL है वो उनके पास ही जाती है, जिसकी वजह से टाइम काफ़ी लगता होते हैं। तो डिजिटल में हम आ चुके हैं, तो डिजिटल में डिजिटल स्टाफ के पास भी ये ही ऑथोराइजेशन होनी चाहिए, बेशक उसके ऊपर क्रॉस चेक हो किसी उसके प्रोजेक्ट मैनेजर का, रेवेन्यू स्टाफ का, कि उसको जो ना वैलिडेट करे, लेकिन एटलीस्ट ठीक करने की वो कंप्यूटर ऑपरेटर के पास हो कि वो ठीक कर दे, और फौरी किसी उसके डैशबोर्ड के ऊपर एस्केलेट हो ये इन्फॉर्मेशन कि वो उसको अप्रूव करके सिस्टम का हिस्सा बने।
सही सर। सर, कैन यू टेल मी अबाउट द GIS कंपोनेंट ऑफ द प्रोजेक्ट?
GIS तो हमारा दूसरा वर्टिकल है। मैं बेसिकली तो उससे जो LMIS है, लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, मैं उसका पार्ट हूँ। GIS के ऊपर अपना जो ना एक टीम काम कर रही है और वो इस बारे में आपको फीडबैक के उसका क्या स्टेटस है। मैंडेटरी है, कंपोनेंट होना चाहिए, अभी तक हमारे पास किसी जगह फंक्शन नहीं है।
ओके सर। सर, कैन यू टेल मी अबाउट द सॉफ्टवेयर डिज़ाइन ऑफ द प्रोजेक्ट?
सॉफ्टवेयर तो हमारा जो इनिशियल वर्जन है वो डिस्ट्रीब्यूटेड फैशन में चल रहा है, हर तहसील में अपना डेटाबेस है, उधर ही डीडी मेंटेन कर रहे हैं उसको। अभी जो है ना मैं यहाँ पे तकरीबन 9-10 महीने से इधर शहजादा और मैं इस पे काम कर रहे हैं सेंट्रलाइज। अब ये पायलट जो है ना कम्प्लीट हो चुके हैं, हमने जो है ना 4 तहसीलों के अंदर ये शुरू भी किए पायलट, सुवात में कबल तहसील किए, बनू में ककी तहसील किए और शांगला का पुरान तहसील है, और डेहान ऑलरेडी चल रहा था उसको हमने शिफ्ट किए, अभी पैरेलल चला रहे, उसका फीडबैक आएगा तो उसको भी ऑपरेशनल कर देंगे। तो ये 4 तहसीलों में अभी सेंट्रलाइज चल रहा है, होना भी सेंट्रल,
किसी भी डिस्ट्रिक्ट में एक्सेस किया जा सकता है, एक डिस्ट्रिक्ट का दूसरे डिस्ट्रिक्ट में
जो सेंट्रलाइज है उसमें तो एक ही सिंगल डेटाबेस है जिसमें इंफॉर्मेशन आ रही है, इसको अब नादरा के साथ भी इंटीग्रेट किया जा सकता है, मोबाइल पे भी जाना सर्विस अवेलेबल की जा सकती है।
लेकिन आप और किसी एक डिस्ट्रिक्ट का डेटा दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चेक कर सकते हैं?
जो ट्रांजैक्शनल डेटा है यानी जो पुरान का डेटा है वो तो पुरान को ही विजिबल होगा, काकी में विजिबल होना भी नहीं चाहिए एज पर रूल, क्योंकि ये ओनरशिप है उस डिस्ट्रिक्ट की। लेकिन एक सेंट्रलाइज डैशबोर्ड जो मैनेजमेंट के लिए, पीडी के लिए, एसएमआर सब के लिए होनी चाहिए, जिसमें ओवरऑल उसको स्टेटिस्टिक शो हो के पुरान में किया हो रहा है, ककी में किया हो रहा है, शांगले में किया हो रहा है।
अगर एक बंदा अपना रिकॉर्ड देखना चाहे तो क्या उसकी शांगला में भी जमीन है और लकी में भी है, तो क्या उसको सिर्फ शांगला के लिए अलग डेटाबेस में लॉग इन करना पड़ेगा और लकी
ना, ना, एक ही इंटरफेस,
एक ही इंटरफेस पे,
एक ही इंटरफेस,
उसको जैसे एक क्लिक में वो अपना नाम एंटर करके उसकी जहाँ जहाँ जमीन है आ जाएगा।
एग्जैक्टली अभी तो हमें उसके फर्ज की वेरिफिकेशन का भी मैं कहना तुम उसमें जाना इस पे काम कर रहे हैं कि फर्ज जो एसडीसी इशू कर रही है उसमें क्यूआर कोड देना आ रहे, तो वो कोई भी कहीं से भी उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि ये वैलिड डॉक्यूमेंट है। मतलब अगर पेशावर से लिए तो आप मर्दान में जाके उसको वेरीफाई कर सकते हैं मोबाइल से कि जाना ये आपका वैलिड है, इस बंदे ने इस टाइम पे ये इशू किया और इसका ये रख बता इस पर।
हाउ अबाउट द नेटवर्क डिजाइन ऑफ द प्रोजेक्ट, कोई प्रॉपर नेटवर्क डिजाइन है?
चूंकि पहले तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड में चल रहा था, वहां पे लोकली एस्टेब्लिश है सारा कुछ, अभी सेंट्रलाइज के लिए अब काम हो रहे हैं, हमने केपी डेटा सेंटर को एज ए रिसोर्स यूज किए, उसके पास जाना टीम भी अवेलेबल है, डिजास्टर साइट भी उनका है, बैकअप मैकेनिज्म भी है। तो अभी हमने विजिट किए पीटीसीएल डेटा सेंटर इस्लामाबाद में और उन्होंने किए, हम अपना भी एस्टेब्लिश कर रहे तो नेटवर्क उस वक्त जाना एस्टेब्लिश जाना फ्यूचर में हमारा प्रॉपर हो जाएगा, जिसमें सेंट्रलाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से सिक्योरिटी होनी चाहिए, वो चीज़ें जाना उसमें इनकॉर्पोरेट होंगी।
सही सर। सर इसके अलावा हाउ डू यू सी द बेनिफिट्स ऑफ डिजिटाइजेशन फॉर कंट्री लाइक पाकिस्तान?
डिजिटाइजेशन की तो सब फील्ड में जो है ना, कंप्यूटराइजेशन सा जितने भी फील्ड है सब में जो है ना एक रिवॉल्यूशन लेके आ चुकी है। तो जो रिकॉर्ड है उसका ज़मीनों का, ये तो एक वैल्यूएबल रिकॉर्ड है, तो अगर ये कंप्यूटराइज पे होगा तो ये मतलब सेफ गार्ड भी होगा, नेचुरल डिज़ास्टर हो गए और जो है ना ह्यूमन जो वो करते होते हैं उसको मैनिपुलेट करते होते हैं उससे भी सेफ हो, सिक्योर भी किया जा सकते हैं। तो मेरे ख्याल में फ़ायदे ही फ़ायदे हैं डिजिटाइजेशन के, और मुल्क के लिए भी ये दूसरी बात, ये ट्रांसपेरेंसी जो है ना इससे ऑटोमेटिकली अचीव हो जाती है, जो चीज़ें आप एक क्लिक के ऊपर जना बैंक भी वेरीफाई हो जाता है कि जना आपने बैंक में पेमेंट कर दिए, रेवेन्यू भी ट्रांसपेरेंट तरीके से आ रही होती है, तो पब्लिक इंस्टेंटली एक्सेस भी कर सकते हैं अपने रिकॉर्ड को। तो मेरे ख्याल में डिजिटाइजेशन तो फायदे ही फायदे हैं मुल्क के लिए भी है, पब्लिक के लिए भी है इन जनरल।
सो व्हाट आर योर लर्निंग्स फ्रॉम द प्रोजेक्ट ऑफ डिजिटाइजेशन?
लर्न तो ये किए कि हमारा मुल्क तरक्की क्यों नहीं कर रहा, इसमें जो अब 1.5-2 साल में जो एक काम होना चाहिए और 6 साल में भी ना हो, तो ये मैं कहता हूँ कि ये बहुत बड़ी एनामली है हमारे मुल्क की, और ये चीज़ें जो है ना एड्रेस होने चाहिए बड़े लेवल पे। जो जानते हैं उसके पास अथॉरिटी नहीं है, और जिनके पास अथॉरिटी है वो जानते नहीं है, जिसकी वजह से हम जो है ना ये 75 साल से सफ़र कर रहे हैं।
सर आपके ख्याल में कौन सी ऐसी चीज़ है जो प्रोजेक्ट को इन्फ्लुएंस करती है पॉजिटिवली या नेगेटिवली? लोग हैं, कल्चर है, या चीज़ें हैं, या प्रोसेसेस हैं?
देखिए ये एक नेचुरल चीज़ होती है, जब कोई चेंज आता होता है ना तो उसको ह्यूमन रिजिस्ट करते हैं इनिशियली, मैं तो जब उधर डेहा में 2 साल में अगर E96 मुझे हुए तो ये बिकॉज ऑफ रेवेन्यू स्टाफ ही हुए। अगर वो कॉर्पोरेट ना करती तो मैं नहीं कर सकता, मैंने तो सिर्फ सुपरवाइज किए काम, तो रेवेन्यू स्टाफ ने किए, कंप्यूटर ऑपरेटर ने किए, सर्विस प्रोवाइडर ने किए। तो वो जो रेजिस्टेंस होती है वो बहुत थोड़ा ही था, 10% लोग रेजिस्ट करते थे जिनके स्टेक थे, मतलब जाना या किसी गलत उसके लिए करते होते थे कि ये ना हो, बाकी तो इनकी वजह से ही हुआ है, जितना हुआ है ना ये इनकी उससे ही हुआ है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और ये रेवेन्यू स्टाफ मैन यही करती होती है।
जी सर, ओके सर, एनी सजेशंस फॉर इंप्रूविंग द प्रोजेक्ट एफिशिएंसी?
हेड एक पावरफुल होना चाहिए।
हाँ, वो इस वक्त आपको लगता है इसके अलावा कोई और दूसरा मेन नीड है हेड के अलावा?
क्योंकि इस पूरे सिस्टम का जो मैं कहता हूँ रूप है वो सॉफ्टवेयर है, क्योंकि सारी चीजें रन कर रही है सॉफ्टवेयर, तो एक जो ना टीम हो अच्छी जो इस चीज़ को जो ना देखे, अभी जो सेंट्रलाइज बने इसको जो है ना इसमें इम्प्रूवमेंट काफ़ी जो है ना गुंजाइश है, तो एक नया वर्जन लिखे, जब तक ये स्ट्रीमलाइन हो तो नया वर्जन जो है ना हम लॉन्च करें, उसमें नए फीचर ऐड करें। तो एक टीम PMU लेवल पे होनी चाहिए जो सॉफ्टवेयर को पर्टिकुलरली देखे, और साथ में जो है ना एक सिक्योरिटी की टीम हो जो साइबर और ये चीज़ें जो है ना ये देखे।
ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू।